मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 14 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी प्रदीप सिंह ठाकुर का, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं GST को लेकर के अभी जो काफ़ी बातें हो रही हैं, जो एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि गतिरोध सा पैदा हो गया है, इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में आपने एक घटना के बारे में सुना होगा, जो एक अच्छी घटना है, अच्छी खबर है, कह लीजिए, घटना तो नहीं कहना चाहिए। वो ये है कि हमारे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मांग में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि मांग में यह जो वृद्धि हुई है वो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में, पिछले महीने की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, मतलब बेहतर, मतलब पिछले साल इसी समय जो मांग थी उससे भी अधिक मांग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। देखिए आपने ये न्यूज़ सुन ली, ठीक है, अब न्यूज़ में तो डिटेल्स में बात नहीं बताई जाएगी, हो सकता है कि अखबारों में भी इसके बारे में कुछ भी ना छपा हो, क्योंकि कोई बहुत ऐसी खबर नहीं है जिसके बारे में आम लोग रुचि रखें, इंटरेस्टेड हों। लेकिन क्या आपको भी उसी तरह का रवैया अपनाना चाहिए, बशर्ते कि आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस पर रुक कर थोड़ा विचार करना चाहिए, विचार इस रूप में करना चाहिए कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ऐसा क्या हो गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा अच्छी मांग, डिमांड जिसे आप कहेंगे, हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। कल आपने मेरे डेली ऑडियो लेक्चर में सुना था सरकार ने कैसे मांग को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीज़ें पहले से हैं, तो क्यों हैं दोस्तों, क्या आप इसके बारे में कुछ बताने की स्थिति में हैं? अगर आप बताने की स्थिति में नहीं है तो मैं आपको एक क्लू देता हूं, आप डेली ऑडियो लेक्चर को याद करने की कोशिश करें। इससे पहले मैंने स्पेशली इसकी चर्चा की थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो आर्थिक परिदृश्य है वो किस तरीके का है, वहां किस तरीके से सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनी पंप किया है, यानी कि वहां धन भेजने की कोशिश की है। आप देखते हैं कि बकायदे जो उनका उनकी जो फसल थी, जो गेहूं, उनकी बकायदे खरीदी हुई, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के फंड को बढ़ा दिया गया, जो गरीब लोग थे उनको मुफ्त में अनाज दिया गया, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और कैसे खेती का रकबा भी बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसी भी माध्यम से अगर धन पहुँच रहा है, अर्थशास्त्र की भाषा में अगर मुद्रा की आपूर्ति हो रही है, इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुँच रहा है। और अगर लोगों के हाथ में पैसा पहुँच रहा है तो वो क्या करेंगे, वो खरीदी करेंगे, इसका मतलब है कि वो डिमांड जनरेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है और सिविल सर्विस को इसी तरह के अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत है, याद रखिए, राइट। दोस्तों एक छोटी सी खबर आज अखबारों में आपने पढ़ी होगी, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना जो हाथरस में घटी थी, कि किस तरह से दुष्कर्म से पीड़ित जो लड़की थी रातों रात उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया था। और जब यह बात कोर्ट तक पहुंची तो हाई कोर्ट ने बकायदे इस पर बहुत गंभीर, आप कह लीजिए, टिप्पणी की है और कहा है कि आधी रात में अंतिम संस्कार इस तरीके से कर देना मानवाधिकार का उल्लंघन है, मानवाधिकार का उल्लंघन। चूंकि ह्यूमन राइट्स आपके सिलेबस में है इसीलिए यह घटना आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप इसका उल्लेख कर सके। और बकायदे हाई कोर्ट ने दो और भी निर्देश दिए हैं। पहला तो यह निर्देश दिया है कि जो राजनीतिक दल हैं और जो दूसरे लोग हैं इस मामले पर बहुत ज्यादा बयान न दें, बिल्कुल आप बयान मत दीजिए। और मीडिया से भी यह रिक्वेस्ट की है कि इन मामलों की रिपोर्टिंग करते समय थोड़ी सी ज्यादा सावधानी बरतें। दोस्तों एक तूफान फिर से आ गया है और हमारे आसपास ही है, लेकिन सौभाग्य से हम उससे बचे हुए हैं, जिसका नाम है लिम्फा तूफान। और ये चक्रवाती तूफान है, वियतनाम में इसने घोर तबाही मचाई है। तो लिम्फा तूफान आप थोड़ा सा अपने दिमाग में दर्ज करा लें। इस बार के प्री एग्जामिनेशन में तूफानों के बारे में नहीं पूछा गया है, अदरवाइज पिछले साल के आप पेपर्स देखेंगे तो कुछ सालों तक लगातार एक क्वेश्चन तो तूफानों पर पूछ ही लिया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे भी नहीं पूछा जाएगा। लिम्फा तूफान जो वियतनाम में आया है, अब आप देखिए कि ये जो चक्रवाती तूफान है ये बेसिकली क्या है। असल में जब इस तरह की कुछ शब्द आप सुनते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में थोड़ा सा समझें। आपने चक्रवाती तूफान शब्द सुना तो आपको मालूम होना चाहिए कि चक्रवाती तूफान क्या है। आपने याद तो कर लिया, ठीक है, लिम्फा तूफान आया, वो चक्रवाती तूफान था, वियतनाम में आया, लेकिन आपको ये तो मालूम हो कि ये चक्रवाती तूफान क्या है। ये तो सीधे तूफान होता है, आ गया, लेकिन ये चक्रवाती तूफान है तो ये बनता कैसे है? आप इस साल का अपना प्री का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो बकायदे उसमें चक्रवात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और जब तक आपकी अच्छी समझ नहीं होगी तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब आप देखिए कि तूफान आते कैसे, तूफान का मतलब क्या हुआ? हवा की तेज गति से बहने की स्थिति, हवा तेज गति से बहने लगती है, बस सीधी सी बात। तो तेज गति से बहती कैसे है, तो हवा कैसे उत्पन्न होती है और फिर चलती कैसे है, आपको यह सिद्धांत मालूम होना चाहिए। और इसका बहुत सा सरल सा सिद्धांत है, कोई बहुत कठिन सिद्धांत नहीं है, कि जब कोई भी चीज गर्म होती है तो हल्की होती है, जब वो हल्की होती है तो ऊपर उठती है। हवा भी जब गर्म होती है और हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, जब ऊपर उड़ जाती है तो हवा नीचे से गायब हो गई है धरती के पास से, तो यहां दबाव कम हो गया है, अब ये खाली स्थान बन गया है, तो जो अधिक दबाव वाला क्षेत्र है वहां से हवाएं यहां चलने लगेंगी। तो इस तरीके से आपको मानसून भारत में प्रवेश कैसे करता है आपको मालूम है। लेकिन चक्रवाती तूफान में होता यह है कि समुद्र का पानी गर्म हो रहा है तो वहां की हवा भी गर्म हो जाएगी जो समुद्र के ऊपर होगा, तो वो गर्म होकर के वो ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र के सतह का पानी गर्म होकर के ऊपर उठने लगेगा तो समुद्र के ऊपर क्या बनेगा? निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। अब निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया, अब ये जगह खाली हो गई। अब पृथ्वी क्या हो रही है? पृथ्वी तो लट्टू की तरह घूम रही है ना, गोल गोल घूम रही है। तो अब ये है कि जो हवा ऊपर उठनी चाहिए गर्म होकर के, वो ऊपर नहीं उठ पा रही है पृथ्वी के घूमने के कारण, वो हवा भी घूमने लगती है। बस वो हवा भी घूम रही है, ऊपर उठने का उसको मौके ही नहीं मिल रहा है। तो यही हवा फिर घूमती हुई हवा आगे बढ़ने लगती है और इसे ही हम कहते हैं चक्रवाती तूफान। कोई बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत ही सरल सा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और थोड़ी सी अलग तरीके की मेहनत भी करनी होगी, जल्दबाजी न करके थोड़ा सा इत्मीनान के साथ अपनी इस यात्रा के बारे में सोचना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, GST को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ है। आज के अखबारों में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा और न्यूज़ में भी वो बात थी, और वो ये थी कि आपको मालूम है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है कोरोना के कारण, उसके संग्रहण में बहुत कमी आई है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं है, चीज़ें खरीदी बेची ही नहीं जा रही हैं, तो फिर टैक्स कहाँ से आएगा? आपको ये भी मालूम है कि बहुत से टैक्सेज ऐसे हैं, GST का तो खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है और उसमें राज्यों की हिस्सेदारी है। तो अब चूंकि टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है तो राज्यों को भी अब टैक्स कम मिल रहा है। अब राज्य अपना खर्चा कैसे चलाएं? ऊपर से तुर्रा यह कि कोरोना संकट के कारण उनके दूसरे खर्च बढ़ गए हैं, तो अब हालत राज्यों में तो यह हो गई कि सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब परिषद की बैठक हुई लेकिन उसमें कहीं कोई बात नहीं बनी। अब आप देखें कि जो मामला है वो क्या है? मामला केवल दो है। मामला दो इस मायने में है कि अब जो टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो अब राज्यों को भी कम मिलेगा, तो इसकी भरपाई कैसे हो, अब राज्य क्या करें? बस कुल मिलाकर के विवाद इस बात को लेकर के है। अगर हम एक्ट की बात करें तो GST कंपनसेशन एक्ट 2017, उसमें यह व्यवस्था की गई थी, ये गारंटी दी गई थी कि जो टैक्स का जो एनुअल ग्रोथ होगा वो लगभग 14% तक होगा, और अगर टैक्स का कलेक्शन कम हुआ तो 5 सालों के लिए यानी कि 2022 तक केंद्र सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। और केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति करे इसके लिए फिर केंद्र सरकार को सेस लगाने का अधिकार दिया, उपकर लगाने का अधिकार दिया है। कोयला पर सबसे ज्यादा सेस लगाया गया है ताकि जो क्षति है उसकी पूर्ति राज्यों को की जा सके। चलिए ठीक है, तो इस एक्ट के हिसाब से तो अभी टैक्स कलेक्शन कम हो गया है तो केंद्र सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे, लेकिन सवाल यह है कि इस केंद्र सरकार भी उसकी क्षतिपूर्ति करे तो कैसे करे, उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, और वो पैसा उसके पास है नहीं, तो अब क्या हो? तो देखिए, अब इस पर बातचीत होती रही दूसरे दूसरे तरीके से, तो फिर केंद्र सरकार ने जो GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें दो तरीके सुझाए कि भाई आप इनमें से एक कोई काम कर लीजिए। तो उसमें से जो एक विकल्प था वो ये था कि राज्य सरकारें उधार लें अपने राज्य से, जहां से भी है उधार लें, और उधार लेने में अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा हो, तो केंद्र सरकार उस पर उसके बारे में उनकी मदद करेगी, ठीक है। और इस उधारी पर जो मूलधन होगा इसका और जो ब्याज होगा उसका जो भुगतान है वो क्षति उपकर को फिर आगे के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 5 साल तक था लेकिन उसके बढ़ा दिया गया। पहले भी इससे खबर आपने पढ़ी होगी कि 2022 तक क्षतिपूर्ति थी लेकिन अब उसे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है और बढ़ाने के लिए वो उपकर लगाएगी, सेस लगाएगी, तो बढ़ाकर कर दिया जाएगा। मतलब अभी आप उधार ले लीजिए, काम चला लीजिए। दूसरा विकल्प जो उन्होंने दिया था वो ये है कि जो भी उनको धन चाहिए उस धन को बकायदे उतना धन वो उधार ले लें और उन्हें फिर इसका ब्याज देना पड़ेगा। चलिए अब जो खबर है कुल मिलाकर के वो ये है कि 20 या 21 राज्यों ने जो केंद्र सरकार का पहला विकल्प है उसे स्वीकार कर लिया है कि वो जो राज्य हैं वो अपने लेवल पर धन जुटा लेंगे। जिन राज्यों ने यह स्वीकार किया है वे वही राज्य हैं जो अभी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है ना, उनकी सरकारें हैं, तो उन्होंने तो इस विकल्प को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं जहां दूसरे पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने इस विकल्प को भी ठुकरा दिया है। अब देखिए कि मामला आगे जाकर के क्या होता है, कहां सेट होता है, यह एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप यूं कह लीजिए कि बात पूरी तरह से बनी नहीं है। दोस्तों अब ये तो इसका एक अर्थशास्त्र का पक्ष था, मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा कि यह विवाद क्या है। लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, संवैधानिक पक्ष भी है, और वो है फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। फेडरल स्ट्रक्चर चूंकि जो संघात्मक स्वरूप है इसको लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी यहां फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में देना चाहूंगा। देखिए जो जीएसटी काउंसिल है ये बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है, और जब इसका गठन हो रहा था तो ये इसकी बड़ी प्रशंसा की गई कि हमारा जो संघात्मक स्वरूप है वो और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहां एक टकराव की स्थिति खड़ी हो गई है और यहां हम उस फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, कमजोर होता हुआ देख रहे हैं। और इसमें आपको साफ तौर पर राजनीति दिखाई दे रही होगी कि केंद्र सरकार जीएसटी पर, तो केंद्र सरकार का ही आप कह लीजिए कि प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व है, तो उसमें शामिल सरकार वाली जो राज्य सरकारें हैं, उसमें शामिल पार्टी वाली जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है लेकिन दूसरी पार्टी वाली सरकारों ने इसे अभी रिजेक्ट कर दिया है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर में आते हुए आप कह लीजिए दरार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बस इस दृष्टि से आप इससे संबंधित और घटनाएं जो आगे घटित होंगी और जो एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। और ये चीज शायद आपको थोड़ी सी जटिल सी लग रही होगी अभी, वह अब सरल भी लगने लगी होगी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं अनूप राज जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।